ओम शांति। आज हमारे सम्मुख उपस्थित है आदरणीय राजू भाई जी, तो हम सभी एक हाथ की ताली से भाई साहब का स्वागत करेंगे। स्वागत है भाई साहब, नया वर्ष भी मुबारक हो आपको। और भाई साहब के विषय में तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि भाई साहब भी लौकिक में यूपी से ही है, कानपुर जोन से। आप बचपन से ही बाबा के ज्ञान में चलते हैं, आपका पूरा परिवार बाबा के ज्ञान में चलता है। आपके लौकिक घर में गीता पाठशाला चलती थी, जिसमें मेजोरिटी दादियां और मम्मा भी आपके लौकिक घर में गई हुई है। तो आप बहुत पुराने भाई साहब हैं। आप 1972 से बाबा के यज्ञ में समर्पित होकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आप की जो गोल्डन जुबली समर्पण की हो चुकी है, तो भाई साहब को हम गोल्डन जुबली के लिए भी मुबारक देते हैं। और भाई साहब के पास ज्ञान योग के बहुत गहरे अच्छे अनुभव है, साथ में दादियों के साथ के भी बहुत गहरे अच्छे अनुभव हैं। आप जब अव्यक्त बाप दादा आते थे, तो जो बाबा की मुरली चलती थी उसको बाबा के साथ साथ जैसे बाबा बोलते जाते थे, भाई साहब उसको टाइप करते जाते थे। और जैसे ही बाबा की मुरली पूरी होती थी, उसके तुरंत बाद वो मुरली दादियों के पास पहुंच जाती थी, उसके बाद सुबह तक सभी भाई बहनों के पास पहुंच जाती थी। तो जो ब्राह्मणों के लिए बाबा और मुरली दो मेन चीज हैं। तो बाबा तो हम सभी का है ही है, लेकिन उसमें जो बाबा की मुरली है वो हम सभी तक पहुंचाने में भाई साहब का विशेष योगदान है। भाई साहब जो मुरली में हम सभी वरदान स्लोगन सार सुनते हैं, उसकी सेटिंग भी आप ही करते हैं। और मधुबन से जो पत्र पुष्प निकलता है उसका प्रकाशन आप करते हैं। और आप जो ग्राम विकास और कृषि प्रभाग हमारा है उसके उपाध्यक्ष हैं। और मधुबन के तीनों ही जो कैंपस है, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, उसके फोटोकॉपी डिपार्टमेंट के आप विभाग के इंचार्ज भाई जी हैं। और आप ने आज तक 50 साल में कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया है। तो आज जो भाई साहब ने इतना देश विदेश में जाकर के सेवाएं की है, क्योंकि भाई साहब विश्व के पांचों ही खंडों में जाकर के बाबा की सेवाएं किए हुए हैं। और भाई साहब का आप लोगों ने एक पीएम टीवी पर प्रोग्राम आता है, उसमें भाई साहब को अनमोल रत्न में आप लोगों ने देखा होगा। तो भाई साहब वैसे तो विश्व विख्यात हैं, हम भाई साहब के विषय में और अधिक क्या बताएं, लेकिन भाई साहब के पास जो ज्ञान योग के अनुभव का खजाना है वो हम सभी भाई साहब से आज सुनना चाहेंगे। तो जो आज हमारा योग का टॉपिक है, योग की यथार्थ विधि और सिद्धि, तो आज भाई साहब के शब्दों में भाई साहब के अनुभव के आधार से भाई साहब अभी हमें स्पष्ट करेंगे कि कैसे हम भी योग की विधि से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय राजू भाई जी, ओम सर।
ओम शांति। बहुत अच्छा छोटा सा ग्रुप अच्छी भट्टी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। एकांतवास का अच्छा चांस आपको मिला है, अन्य स्थानों पर तो काफी संख्या में भाई बहने पहुंचे हैं, लेकिन ज्ञान सरोवर में, और जब इस हाल में मैं आता हूं तो कहता हूं ये है पांडवों की गुफा, इस गुफा के अंदर बैठ के तपस्या करो। तो आप सबने यहाँ 3 दिन अच्छी तपस्या की। मैं मैनपुरी के हैं, और कहाँ के हैं, हिमाचल के कौन हैं? हिमाचल के भी हैं, और मैनपुरी से कोहाबाद जी, सिरसागंज के कौन हैं, हाथ उठाओ। और मैनपुरी के, ठीक है, हिमाचल में कहाँ से हैं, हमीरपुर। अच्छा, तो सभी ने अच्छी 3 दिन योग की तपस्या की है ना, विधि से सिद्धि, योग की यथार्थ विधि अगर कोई विधि पूर्वक योग करे तो सब सिद्धियां अपने आप मिल जाती हैं। और समय प्रसमय बाबा अपने बच्चों को योग की भिन्न भिन्न विधियां समझाते सिखाते रहते हैं। आज की मुरली से आपने योग की विधि सीखी? क्या सीखी आज की मुरली से? क्योंकि विधियां ही मुरली में सिखाई जाती है। करना तो हम सबको अपने अपने ढंग से ही है, लेकिन मुरली अगर ध्यान से हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी युक्तियां विधियां बाबा अपने बच्चों को सिखाते हैं। अंधश्रद्धा नहीं है, भक्ति मार्ग की तरह भावनाएं सिर्फ नहीं है, लेकिन अगर यथार्थ विधि है तो सब प्रकार की प्राप्तियां हो जाती हैं, सिद्धियां मिल जाती हैं। तो आज बाबा ने वरदान में विशेष विधि बताई, अगर आपको परमात्म प्यार का अनुभव करना है तो क्या करना होगा? कमल फूल के समान न्यारे रहना होगा। जितना कमल फूल के समान न्यारे रहेंगे उतना परमात्म प्यार के अधिकारी बन जाएंगे, और जिसको परमात्म प्यार प्राप्त होगा उसको योग की मेहनत तो है ही नहीं। योग का आधार प्यार ही है। कोई कहे हम बाबा को याद करें, बाबा से शक्ति लें, बाबा से कनेक्शन जुटे और प्यार ना हो, तो जहां प्यार होता है वहां संबंध जोड़ना बहुत सहज हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं याद प्यार, तुम याद करो मैं तुमको प्यार करूं, तुम प्यार करो मैं तुमको याद करूं, ऐसा है ना, यही संबंध है हमारा बाबा के साथ। तो सभी बाबा को प्यार करो तो बाबा याद करे, और आप बाबा को इतना प्यार से याद करो जो बाबा आपको प्यार करने लगे, ठीक है ना। तो विधि क्या हुई? न्यारे बनना। जितना हम न्यारे बन करके रहते हैं देह से संबंधों से, डबल लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं, तन मन धन सब तेरा है, बाबा को अर्पित कर देते हैं, तो समर्पित कर देते हैं तो हल्के हो जाते हैं, और हल्के होते हैं रोड़ने लगते हैं। जहां पर बोझ है, भारीपन है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा बिजनेस, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरा जहां है वहां पर ही बोझ है, बंधन है। और बोझ वाला तो वैसे भी चल फिर नहीं सकता, उड़ना तो दूर की बात है। जिसके ऊपर बहुत बोझ होता है उसको कहा जाए इतना तुम पैदल करो, कैसे करेगा। तो बाबा हम बच्चों को कहता है अगर योग की यथार्थ विधि जाननी है तो विधि यही है, पहले अपने सब बोझ बाबा को अर्पित करो। संगम युग पर यही भाग्य है हम सबका, जो भगवान अपने बच्चों के सब बोझ सब जवाबदारियां खुद ऑफर करता, बच्चे दे दो मुझे, कोई नहीं रखना अपने पास, तुम बच्चे बन जाओ। बच्चे बन जाओगे तो बच जाओगे। तो बच्चे है ना सभी बच्चे, अगर बहुत बड़े गंभीर कोई बहुत जवाबदारी ले लेते हैं तो कहते क्या है भाई छोटा है अभी, तुम क्यों जवाबदारी ले रहा है, माँ बाप बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, तुम जवाबदारी क्यों लेता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कह रहे हैं संगम युग पर आप बच्चे सिर्फ बच्चे बन जाओ, बच जाओगे और हल्के हो जाओगे तो तुम्हारा योग तो माँ बाप के सिवा और कहाँ जाएगा। तो विधियों को अगर यथार्थ रीति से समझते हैं और विधि पूर्वक अगर हम योग करते हैं, हमें कोई चमत्कार वाली रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। वो तो आजकल हट क्रियाओं से कई प्रकार के तंत्र मंत्र से सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं लोग, लेकिन बाबा ने हमें जो भी सिद्धि दी है वो विधि से दी है। अगर विधि यथार्थ है तो सिद्धियां मिलती हैं, सफलता मिलती है। सिद्धि माना वो कोई छू मंत्र वाला नहीं है, कोई के रूप को बदल दिया, कोई फूल को जानवर बना दिया, जानवर को कोई मनुष्य बना दिया, वो सिद्धि नहीं है। कोई भभूत निकाल देता है हाथ से, कोई अंगूठी निकाल देता है हाथ से, कोई कुछ कर देता है, वो कहते हैं बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है, ये सिद्धि बाबा हमको नहीं देता। लेकिन वो सिद्धि देता है जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाए, आत्मा सब बंधनों से मुक्त हो जाए, वो सिद्धि कोई दुनिया में नहीं दे सकता। लेकिन उस मुक्ति की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सब बंधनों से, सब विकारों से आत्मा मुक्त हो जाए, क्या विधि है, यथार्थ विधि क्या है? अगर यथार्थ विधि यूज करोगे तब तो मिलेगी मुक्ति। तो बाबा ने हम सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सबसे बड़ा बंधन है शरीर का, हर आत्मा इस शरीर के बंधन में, क्योंकि 84 जन्म इसके साथ रही है, इसके बिना उसका काम ही नहीं चलता। सतयुग में आई तो भी शरीर मिला, और शरीर के साथ पाठ बजाते बजाते आत्मा इस बंधन में इतना बंध गई है। जब बाबा को बड़ी मेहनत लगती है देहमान से देही अभिमानी बनाने में, कहता बच्चे देहमान तो बहुत नेचुरल हो गया, नेचर बना लिया तुमने, कोई भी बात होती फट से देहमान आ जाता, गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा कोई अपमान कर दे वो अपमान सहन नहीं होता, अभिमान वाले को अपमान सहन नहीं होता। तो जैसे नेचुरल रूप में देहमान हो गया है, ऐसे देही अभिमानी स्थिति नेचुरल बन जाए। तो विधि यथार्थ है कि मैं आत्मा इस रथ का रथी सारथी हूं, ये विधि है। जिसने इस विधि को अपना लिया कि मैंने रथ धारण किया है, मैं इससे अलग हूं, मैं रथी हूं, ये रथ है, तो ये विधि अगर यथार्थ अपना लिया तो सबसे पहले इस बंधन से मुक्त हो जाए। जो शरीर का बंधन है, आत्मा को जो अपनी तरफ खींच रहा है, जो इससे अनेक प्रकार के विकर्म करा रहे हैं, कर रहे हैं, उनसे आत्मा मुक्त हो जाएगी। विकर्मों से ही, पाप कर्मों से ही मुक्त होना है, और जब इनसे हम मुक्त हो जाएंगे तो जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव करेंगे। लोग आज मुक्ति क्यों चाहते हैं? कोई से पूछो तुम क्यों मुक्ति चाहते हो, कहता दुख बहुत है, बहुत परेशानी है, बहुत झंझट है कलयुग के अंदर, इसलिए मुझे मुक्ति चाहिए, मैं तो परम धाम घर में जाके बैठ जाऊं। बाबा क्या कहता है, ऐसे कच्चे खिलाड़ी हो क्या जो डर जाओगे? डरो नहीं, लेकिन विधि सीख लो, संसार में रहने की विधि सीख लो। तो संसार तो सागर है, लेकिन सागर में जो तैरना जानते हैं, जो उसके अंदर डुबकी लगाना जानते हैं, उसका मनोरंजन करते हैं, वो डरते नहीं, घबराते नहीं है कि क्यों लहर आ गई, इतनी तेज लहर आ गई। सागर पर गए हो? यूपी वाले शायद सागर पर नहीं पहुंचे होंगे कहीं। कौन कौन सागर देखा है? हैं, अच्छा देखा है, हिमाचल वालों ने देखा है सागर? अच्छा, कुछ एक ने नहीं देखा होगा, तुम लोगों ने देखा सागर? अच्छा हाँ, उड़ीसा वाले तो सागर किनारे, सागर में कितनी लहरें होती हैं, कहीं कहीं नहीं होती हैं, लेकिन कहीं कहीं सागर की लहरें उछलती हैं बहुत तेज। पुरी में तो बहुत लहरते हैं, पारादीप में तो शांत है। अच्छा, लेकिन कहीं कहीं आती हैं। एक जगह मैं गया था उड़ीसा में, जहां पर 3-4 किलोमीटर सागर के अंदर ऐसे ही चले जाओ, जहां पर परीक्षण करते हैं ना अपने साइंस वाले, वहां पर बिल्कुल लहरें नहीं सागर के अंदर। लेकिन सागर जहां लहरें होती हैं, तूफान होते हैं, वहां पर जो बहुत तैराक होते हैं उसका मनोरंजन लेते हैं, उसमें डुबकी लगाएंगे, तैरेंगे सागर की लहरों के साथ, उछल जाएंगे, और कोई ऐसे अनजान पहुंच जाएगा तो चला जाएगा, अंदर बह जाएगा। तो बाबा भी कहता है संसार तो सागर है, इसके अंदर तो बहुत लहरें आ रही हैं, अनेक तूफान, अनेक विकार, अनेक बुराइयां, हर एक समस्याएं सागर की लहरों की तरह आएंगी, लेकिन आप बच्चों को तैरना सीखना है, उसमें खेलना सीखना है, उसमें मनोरंजन करना है, तो हम सबको बाबा ने तैराक बनाया है। इसमें डरना नहीं है, डूबना नहीं है, घबराना नहीं है, लहरें क्यों आ गई, कहां से आ गई, कैसे आ गई, बाबा ने विधि बताई है, बच्चे ये नाटक चल रहा है, अटकना नहीं, फुल स्टॉप लगाओ, क्यों क्या के प्रश्नों में जाओगे तो डूब जाओगे, यही व्यर्थ संकल्प है। और व्यर्थ संकल्पों पर विजय प्राप्त करने के लिए हम सबको अच्छे संकल्पों में रमण करने की विधि सीखनी है। आज मुरली हमको बाबा किस लिए कहता, रोज सुनो, रोज अमृत वेले उठ करके पहले योग में शक्ति लो फिर मुरली क्लास करो, क्यों कहता है, क्योंकि इससे आत्मा बहुत शक्तिशाली समर्थ बन जाएगी। सकारात्मक सोचने की कला मुरली सिखा देती है, अच्छा चिंतन करो, कैसे कैसे अंदर ज्ञान का मंथन चिंतन करो जिससे आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो जाए। अब कोई कहे क्या करूं, मुझे बहुत व्यर्थ आता है, इससे होता वैसे होता, बहुत तूफान आते, बहुत स्वप्न गंदे आते, समय व्यर्थ जाता, बाबा कहता तेरे को विधि नहीं आती। सिद्धि तो यही प्राप्त करनी है ना कि हम इन विकारों पर, इन कर्मिंद्रियों पर, इन संस्कारों पर विजय प्राप्त कर ले, सिद्धि ये है। सिद्धि ये नहीं है कोई को हमने छू मंत्र कर दिया वो बीमारी उसकी ठीक हो गई, वो सिद्धि नहीं। सिद्धि ये है कि कोई भी संसार में कितने भी उपद्रव हैं, कितने भी बहुत बुराइयां हैं, बहुत विकार हैं, उसके बीच में रहते हुए हम उसमें डूबे नहीं, उसमें तंग न हो, उसमें परेशान न हो, रहें सबके बीच में और सबसे न्यारे प्यारे रहें। ये बाबा ने हम सबको सिद्धि दी है और उस सिद्धि की विधि बताई है, केवल आत्म अभिमानी स्थिति बनाने का अभ्यास करो, कोई और मेहनत करने की जरूरत नहीं। यही मेहनत बस मेहनत है कि मैं जो इतना समय शरीर के साथ पार्ट बजाया है, इस बंधन में बंधती गई हूं, मैं अभ्यास करूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं इस भ्रकुटी आसन पर हूं। ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में कितना अभ्यास किया, कितना बच्चों से कराया, बाबा रोज डायरी खुद ही लिखता था, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा अपने युगल को कहता था, ये जसोदा नाम था, ये जसोदा आत्मा है, ये जसोदा आत्मा है, बच्चे का नाम नारायण है, नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है। बाबा ने अपनी डायरी ऐसे भर दी लिख लिख करके, पक्का करने के लिए कि एक भान खत्म हो जाए कि मेरे बेटे है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, मेरी युगल, सबको बाबा ने आत्मा है, सब आत्मा देखने का अभ्यास कर लिया। अब आत्मा देखने की जो विधि अपना ली, उसे क्या सिद्धियां मिल गई, देहभान खत्म हो गया, दैहिक संबंध खत्म हो गए, बाबा को कोई लौकिक संबंध से देख ही नहीं सकता था, सब बाबा ही कहने लगे। आज लौकिक में बेटी को उसकी लौकिक माँ माँ कहेगी क्या कभी, और मम्मा की लौकिक माँ साथ रहती थी, यही आबू में भी थी, और मम्मा को मम्मा कहती थी, बाबा भी मम्मा को मम्मा कहने लगे। मतलब वो जो भान था दैहिक संबंधों का रिश्ता, वो सब खत्म हो गया। ये सिद्धि है कि हम परिवार में रहें, देह में रहें, संबंधों में रहें, भिन्न भिन्न समाज के कार्यों में रहें, और कार्य करते हुए भी लौकिकता समाप्त हो जाए, अलौकिकता आ जाए, वो न्यारापन आ जाए, ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये विधि अपनानी होगी कि हम जितना समय आत्मिक स्थिति में रह सकें, देही अभिमानी बनने की नेचर को नेचुरल बना लें, तो सिद्धि मिल जाएगी, सबके बीच में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रह सकते हैं, वो दैहिक आकर्षण खत्म हो जाएगा। कलयुग में देही का आकर्षण समाप्त हो जाए, हम देखें सबके बीच में रहें और हमारे को कोई भी आकर्षित न कर सके, कोई व्यक्ति आकर्षित न करे, कोई वस्तु आकर्षित न करे, कोई संबंध आकर्षित न करे, उसके लिए आवश्यक क्या हुआ, आत्म अभिमानी स्थिति। विधि अपना लो और इस विधि को जिसने जितना पक्का किया, अभ्यास किया है, वो कर्म इंद्रियों का राजा बन गया। पहले सूक्ष्म शक्तियों पर राज्य किया, मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर, और इनके आधार से इन स्थूल कर्म इंद्रियों पर भी उसका शासन हो गया। तो सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि हम इस शरीर में रहें लेकिन शरीर का बंधन आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित न करे। आत्मा मालिक बन करके रहे, राजा बन करके रहे, राजाई प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त हो जाए, इसकी विधि यथार्थ अपना लो बस। तो हम सब योग करते हैं, लेकिन योग की विधि क्या है? अब बाबा से कोई बातें करे, मान लो आप बाबा से बात करो और बाबा अपनी तरफ से आपको बोलते जाओ, बाबा आप कितने अच्छे हो, कितने मीठे हो, आप परम धाम से मेरे लिए आए हो, बहुत सारी बातें करो बाबा से, और बाबा के एक भी रिस्पॉन्स आपको न मिले, तो क्या होगा? निराश हो जाएंगे। हम तो इतना सारा एक तरफ बोलते रहते, बाबा तो बोलता ही नहीं, कुछ कोई जवाब ही नहीं मिलता, होता है ऐसा? अच्छा, बाबा अगर नहीं बोल रहा तो उसका कारण क्या है? आपको बाबा की आवाज समझ में नहीं आ रही है। कारण यह है कि विधि ठीक नहीं है। विधि अगर ठीक है तो बाबा से मिलन की अनुभूति अपने आप होने लगेगी, अपनी बातों का रिस्पॉन्स बाबा से अपने आप मिलेगा। लेकिन विधि यथार्थ यही है, अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा से बात करो। बाबा ये संसारिक भाषा हिंदी इंग्लिश आपकी जो भाषाएं हैं उनको नहीं जानता, उस भाषा का जवाब भाषा में नहीं मिलेगा, लेकिन भावना की, स्नेह की, प्यार की जो भाषा है उसका रिस्पॉन्स फट से मिल जाएगा, उसी रूप में मिल जाएगा। इसलिए बाबा से अगर उत्तर चाहिए कोई भी बात का तो बहुत दिल से प्यार से बाबा के स्नेह में खो जाओ। जो इस समय लौलीन स्थिति की बातें चल रही है ना, बाबा के प्यार में खो जाओ, समा जाओ, मैं और मेरा बाबा। एक अंदर की आंतरिक भावना अगर बहुत श्रेष्ठ और स्नेह भरी है तो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा और ऐसे लगेगा हम यहां बैठे बाबा से डायरेक्ट बात किया, डायरेक्ट शक्ति लिया, सकाश लिया, बाबा से मिलन मनाया और वो अनुभूति करके एकदम आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन अगर आप देहमान को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, बार बार बॉडी कॉन्शियस में रहते हो और उसी रूप में बाबा से बातें कर रहे हो तो बाबा का उत्तर नहीं आएगा। विधि सीखो, यथार्थ विधि। हर चीज के लिए बाबा ने विधियां बताई हैं। वरदान आप सुनते हो, ऐसे नहीं बाबा ने वरदान दे दिया तथास्तु कह दिया भक्ति की तरह, हो जाएगा? वरदान दे दिया बाबा ने, बाबा के तब बच्चे ऐसे मैं कुछ भी नहीं देता, लेकिन मैं विधि बता देता हूं, इस पर चलोगे तो ये वरदान मिल जाएगा। कोई भी वरदान लेने की विधि क्या है बोलो? वरदान लेने की विधि क्या है? दान करो, उसी में ही है, दान करो। अगर आपके पास कोई शक्ति है उसको दूसरों को बांटो, दो, वो शक्ति वरदान के रूप में आपके पास आ जाएगी। कितनी सरल बात है, विधि ठीक है तो वरदानों से आत्मा भरपूर वरदानी बन जाएगी। तो विधि है कि अगर हमारे पास कोई शक्ति है, मान लो मेरी मनसा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे विचार चलते हैं, बहुत अच्छा हम चिंतन करते हैं, सबके प्रति हमारी शुभ भावनाएं रहती हैं, कोई नेगेटिव इसके अंदर नहीं आता है, तो इसकी सिद्धि क्या है? जिस आत्मा के प्रति हम कोई शुभ संकल्प करेंगे उसको उसकी अनुभूति होगी, उसको लगेगा कि कोई मेरे शुभ चिंतक हैं, कोई मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं, और उसके रिजल्ट में हमारा मन और शक्तिशाली बनता जाएगा। जितना हम दूसरों को सहयोग देंगे, जितनी शुभ भावनाएं रखेंगे, जितना स्नेह युक्त व्यवहार करेंगे, ये विधि यथार्थ रखेंगे तो हमें सिद्धि प्राप्त होगी कि मन हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। एक सेकेंड में इसको जहां ले जाना चाहो वहां पहुंच जाएगा, भटकना बंद कर देगा, कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चे मनसा से शक्तियों का दान करो, आप शक्तिशाली बन जाओगे। लेकिन दान नहीं करोगे और वरदान मांगते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर मनसा से दान किया, किसी के प्रति शुभ भावनाएं रखी, उसको प्रसन्ने रखा, उसको अपनी तरफ से सहयोग दिया आंतरिक सूक्ष्म रूप में भी, तो मन बड़ा शक्तिशाली बन जाएगा, अपने कंट्रोल में आ जाएगा, जो सोचोगे होने लगेगा। आजकल ये अनुभव होता है, बड़े छोटे छोटे अनुभव हैं, लेकिन ऐसे अनुभव हो रहे हैं, संकल्प करो और काम हो जाता है। जो बाबा कई बार कहते थे साकार में, अव्यक्त रूप में भी कहते थे, बच्चे एक दिन ऐसा आएगा जो पूरे यज्ञ की कारोबार संकल्प से चलेगा। तो बाबा यही महावाक्य के पहले उच्चारण करते थे कि आगे चल करके पूरे यज्ञ की कारोबार संकल्प से चलेगी। जैसे अव्यक्त वतन की कारोबार चलती है, ऐसे ही ये साकार वतन भी अव्यक्त वतन बन जाएगा। यहां भी कोई किसी को कह करके नहीं कराएगा, आपके संकल्प से कारोबार चलेगी। ये बहुत बड़ी सिद्धि है कि इतना बड़ा कार्य चल रहा हो, सब तरफ से कार्यक्रम हो रहे हो, लेकिन कोई किसी को कोई डायरेक्शन न दे, संकल्प करे और हो रहे हो। तो हमारी दादियों ने वो सिद्धि प्राप्त कर ली, जो सोचते थे हो जाता, जो संकल्प करे हो जाए साकार में भी। जो दादी जानकी जी ने, दो जो हमारी बड़ी दादी ने संकल्प किया, काम हो गए। बहुत कम बोल करके कराया, ज्ञान सरोवर बनवाया, शांति वन इतना बड़ा निर्माण हुआ, उसके बाद मनमोहिनी वन बना, सब दादियों के संकल्प से सब सिद्धियां मिली। संकल्प उठते थे, काम होने लगते थे, कहीं से किसी से हाथ फैलाया नहीं, मांगा नहीं, सब करने वाले अपने आप सामने आ गए। संकल्प से कारोबार। एक दिन की संकल्प की बात आपको सुनाता हूं, सुना हो शायद, क्लासेस सुनते हैं। दादी एक दिन बैठी थी, अचानक मैं गया अपने कमरे में, दादी प्रकाश मणि की बात कर रहा हूं, देखा है आप लोगों ने, देखा है ना। तो दादी प्रकाश मणि जी अपने कमरे में वहां नीचे शांति वन में बैठी थी, और मैं गया तो थोड़ी हल्के से, बहुत हल्के रीति से दादी कहती, राजू आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है, ऐसे ऐसे किया। तो मैंने हाथ पकड़ करके उनका कहा, दादी दहा कहाँ खुजली होती दादी, बोली यहाँ खुजली होती है, ऐसे ऐसे की। दादी हाथ में खुजली होती तो क्या होता है, बोली पैसा आता है, ऐसे ही बिल्कुल भोलेपन से पैसा आता। मैंने दादी ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा लाओ मैं भी खुजला देता हूँ, ऐसे ऐसे किया। इसमें भी होते, बोले नहीं इसमें होते तो कुछ नहीं होता, इसमें होते तो आता है। ऐसे ही हंसी में ही दोनों बैठे रूहरियान कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद हमने अपना बात जो करनी थी वो किया, और चल वहां से निकल के, पांच मिनट तीन मिनट ही हुआ होगा, वहां से निकल करके मैं बरगद के झाड़ की तरफ उधर आया था, पीछे से आवाज आई, राजू को बुलाओ। तो क्या हुआ, अभी तो मैं मिल के आया। पांच मिनट के अंदर ही दादी के हाथ में इतना पैसे का लिफाफा आ गया। तो मेरे को बुला करके बोलती है, देख बोला था ना खुजली हो रही, आ गया। तो मैंने कहा कहां से आ गया, क्या ऊपर से गिरा क्या, बाबा के तो छप्पर फाड़ के देता हूं, कोई छत फट गई क्या। तो मैं इधर उधर देखने लगा, दादी कहां से आया। कहती तुम इधर से गया, उधर से एक भाई आके दे गया। और मैंने कहा तुम जा बाबा कमरे में बैठ जा, और वो बाबा कमरे में बैठा है, और ये जितना संकल्प किया था ना उतना आ गया। तो क्या संकल्प किया था आपने, कि आज सवेरे सवेरे मेरे पास कोई ने कहा मनमोहिनी वन में इतना खर्चा है, कम से कम आज 5 लाख चाहिए। अब मैं किसी से क्यों मांगू, बाबा बैठा है, दूल्हे लाल का कुआं तो बाबा के पास है, अपने आप देगा। मैंने बाबा को बोला, बाबा ये कहां से आएगा 5 लाख इनको चाहिए। तो बाबा से सुबह रूहरियान किया था, बाबा से ही बताया था, और तुम आया तो खुजली बता करके। हमने कहा देखिए कहां से आता है, कौन देता, संकल्प उठा है, और भाई दे गया, इतना ही दे गया, देख ले संकल्प की सिद्धि। और जो शुभ संकल्प, ऐसा नहीं कि आप लोग संकल्प कर लोगे पैसा आ जाएगा। शुभ संकल्प की सिद्धि है जहां आवश्यकता है, जहां बाबा से बहुत सच्चे दिल का प्यार है, जहां पर जरूरत है वहां पर बाबा मदद करने के लिए बन जाता है, देता है आकर के। लेकिन इन आत्माओं ने इस यज्ञ को जितना बढ़ाया है, संपन्न किया है, भरपूर किया है, और अभी तक भी भरपूरता है, उसका कारण है इन दादियों के संकल्प को सिद्धि प्राप्त हो गई, और उन संकल्पों पर उन्होंने बहुत अटेंशन दिया, व्यर्थ नहीं सोचा, किसी के प्रति कोई कामनाएं नहीं रखी, स्वार्थ भावनाएं नहीं रखी, कोई से लेने की भावना नहीं, देना देना देना, इनके संस्कारों में कूट कूट के देना भरा, दातापन के संस्कार, कोई आ गया, इसको ये सौगात दो, इसको ये चीज दे दो, ये दो ये दो ये दो। हमारी दादियों ने देना सीखा और बाबा ने देना सिखाया। हम दे चले, देते चले, देते चले, सामने वाला अपने आप देगा, रिटर्न करेगा, कहां तक ले जाएगा। तो अगर हम दाता बन करके रहते हैं, कुछ भी देते हैं, तो हम भरपूर हो जाते हैं। तो विधि क्या है? दाता बनो। तुम दो, देना सीखो, मांगो नहीं किसी से। तुम दोगे तो सामने वाला अपने आप रिटर्न कर देगा। लेकिन संकल्प बड़े शुद्ध और पवित्र चाहिए, स्वार्थ वाले नहीं, कोई भी प्रकार की कामना वाले नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करो। मनसा सेवा करो तो मन शक्तिशाली बन जाएगा। वाचा से दान करो, ज्ञान दो, किसी को कुछ रास्ता दिखाओ, आपकी वाचा शक्तिशाली बन जाएगी। जो बोलोगे होने लगेगा, सिद्धि स्वरूप बन जाओगे, जो बोल दो हो जाएगा। लेकिन कब? जब वाचा में जरा भी व्यर्थ नहीं है। ऐसे नहीं जो आया बोलते रहे, जब आया बोलते रहे। इसलिए बाबा कहता, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जितना बोल पर कंट्रोल करोगे, बोल बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे, और जो जिसके लिए कह दोगे होने लगेगा। तो सिद्धि स्वरूप बनने की विधि हुई कि हम अपनी वाचा को बड़ा शुद्ध, बड़ा पवित्र बनाएं, और ज्ञान के सिवाय और कुछ भी न बोले। जो बाबा ने मुझे सुनाया है वही मैं सुनाऊं दूसरों को, और कुछ न सुनाऊं। तो ज्ञान दान करो वाचा से, तो वाचा वरदानी बन जाएगी। कर्म से गुणों का दान करो, ऐसे कर्म करो जो लोगों को प्रेरणा मिले कि देखो इस आत्मा ने कितना अच्छा काम किया, इसके पास जो कुछ था ये सब सेवा में लगा दिया। दूसरे सीखेंगे आपको देख करके। आप अगर अच्छा कुछ कर रहे हो, कुछ किया हुआ है, तो दूसरे देख करके सीख जाएंगे, तो ये गुणों का दान हो जाएगा। और आप कर्म से अगर गुणों का दान कर रहे हो, प्रेरणाएं दूसरों को दे रहे हो, तो आपके कर्म बड़े महान बन जाएंगे और आप अंदर से गुणवान बन जाओगे। तो गुण मांगने की, मेहनत करने की, धारण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वरदान के रूप में, सिद्धि के रूप में गुणवान बन जाओगे। लेकिन दान करो पहले। तो जिसने जो शक्ति, जो गुण, तन मन धन समय जो जिसके पास है, वो सेवा में जिसने जितना लगाया, उतना वो माला माल बन गया। ये वो सिद्धि वो प्राप्त हुई। विधि अपनाई दान करने की, लेकिन सिद्धि मिल गई कि वो भरपूर हो गया। तो बाबा अपने बच्चों को हर प्रकार की विधि बताता है। इसलिए यथार्थ योग है। अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो, योगी आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, आपके संकल्प में इतनी शक्ति हो कि आप जिस कार्य के ले जाओ सफल हो जाए, जो सोचो होने लगे, करने लगे सामने वाले, लेकिन विधि अगर यथार्थ नहीं है तो जाओगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी। तो बाबा ने क्या विधि बताई कि जाने के पहले एक मिनट बाबा के कमरे में जाओ। विधि ये है, बाबा को साथी बनाओ, बाबा से बातें करो, बाबा को अपने दिल की बात सुनाओ, जो करने जा रहे हो बाबा को बताओ पहले। बड़ों से छुट्टी ली जाती है। लौकिक में भी अगर कोई काम करने बच्चे जाएं और माँ बाप को न बताएं तो आशीर्वाद नहीं मिलती है। सिस्टम बनी हुई है दुनिया की, हमारी भारतीय संस्कृति की ये सिस्टम है कि कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, बड़ों को सिर्फ बता दो। बता दिया तो उनकी आशीर्वाद, उनके सूक्ष्म सकास मिल गई, और वो सकास लेने की विधि जिसने सीख ली, बड़ों की दुआएं लेने की विधि सीख ली, वो कोई भी काम करेंगे सिद्धि ही हुई पड़ी है। इसलिए बाबा ने विधि बताई है, सब पक्का करना। घर से जब बाहर निकलते हो, अपने लोग के घर में भी एक छोटा सा बाबा का ऐसा कमरा होना चाहिए। बाबा के कमरे में एक मिनट जाओ, ऐसे दृष्टि लो, बाबा को सब सुनाओ, यहां ही नहीं सुनाओ, उस फोटो के आगे बाबा को वतन में इमर्ज करो कि बाबा आप वहां हो, मेरे साथ चलो। ऐसे बात करके, शक्ति लेकर के फिर सेवा पर जाओ, तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा। जहां जाओगे वहां बाबा के साथ का अनुभव होगा। और बड़े शुद्ध सकारात्मक संकल्प लेके जाओ। ये संकल्प नहीं करो, वो तो करेगा ही नहीं, वो तो ठीक व्यक्ति नहीं है, वो तो बड़ा विरोधी है। लोगों के सुनी सुनाई बातों पर अपने दृष्टिकोण को आपने बदल लिया, और आप उसी से काम कराने जा रहे हो और सोच रहे हो तो करेगा ही नहीं। करेगा क्या? सिद्धि नहीं मिलेगी आपको। अगर सिद्धि चाहिए तो सोचो ये जरूर करेगा। क्यों नहीं करेगा? जरूर करना ही है, इसी को तो करना है। और इसी से मैंने कराया था। बाबा ने इस तरह से हम बच्चों को हैंडल किया, इस विधि से बाबा की सिद्धियां मिली हैं। इतने जो सेंटर खुले हैं, इतने से बच्चे निकले हैं, कोई कहे नहीं नहीं ये तो बहुत मुश्किल बात है, अगर ये सोच लिया होता ना तो आज इतनी सेवा की वृद्धि नहीं होती। आज जो सेवाओं में वृद्धि हुई, बाबा ने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारा नया ज्ञान है, इतनी ऊंची धारणाएं हैं, पवित्रता का व्रत है, अमृत वेले का उठना है, लोग कैसे करेंगे। बाबा ने कहीं नहीं सोचा कि नहीं कर सकेंगे। विदेश में सेवाएं शुरू करनी, सबके अंदर ये संकल्प, ये विदेशी लोग सुबह कैसे उठेंगे, ये तो सूर्य के दर्शन ही नहीं करते हैं, उनकी ठंडी इतनी होती है, वो मांसाहारी शराब पीने वाले, वो हमारे शाकाहारी कैसे बनेंगे, संकल्प चले थे सेवा के समय। बाबा ने कहा संकल्प नहीं करो, ये संकल्प करो कि जहां पर ब्राह्मण आत्माओं के कदम पड़ेंगे वहां पर कुछ न कुछ रिजल्ट अच्छी निकलनी ही है, वहां छिपे हुए ब्राह्मण हैं और वो निकलेंगे। आप जा रहे हो और जाने के समय ये संकल्प नेगेटिव नहीं करो, आप अच्छे संकल्प वहां पर भेजो कि वहां पर जो भी बाबा के छिपे हुए लाल हैं वो सब आ जाएंगे, बाबा मुझे भेज रहा है, इसमें बहुत बड़ी सिद्धि भरी हुई है। तो संकल्प यथार्थ हैं, विधि पूर्वक हैं, आप कहीं भी कोई कार्य के लिए जाओगे सब होने लगेगा, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सोचने लगते हैं यहां हम जा तो रहे हैं, वहां के लोग सुनेंगे नहीं, वहां के लोग बड़े शराबी हैं, बहुत अलग प्रकार के लोग हैं। तो ये जो संकल्प आपने कर लिया तो जाने के बाद भी वही रिजल्ट आएगी। इसलिए संकल्प बड़े पवित्र, बड़े शुद्ध, बहुत सकारात्मक, ये कला सिखाई है और उसी विधि पूर्वक चलने से आज इतनी सेवाओं की वृद्धि हुई है, इतना विस्तार हुआ है देश विदेश में, इसी विधि से केंद्र खुले हैं, हर धर्म की आत्मा आई है बाबा के पास। लेकिन सोच लेते तो आएंगे ही नहीं, ये तो बड़े कट्टर लोग हैं, ये तो सुनेंगे ही नहीं, ये तो बड़े व्यर्थ सोचने वाले हैं, नेगेटिव हैं, बहुत मांसाहारी हैं, ये हमारी बातें कैसे सुनेंगे। संकल्प अगर हमारा साधारण है, नेगेटिव है, व्यर्थ है, तो उसके रिजल्ट नहीं निकलते। इसलिए विधि यथार्थ रखो, योग की भी विधि यथार्थ है, सेवाओं की भी विधि यथार्थ है, तो सफलता हमारे पीछे पीछे आती है। बाबा कई बार कहते हैं सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ब्राह्मणों को सफलता नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, इसलिए कदम कदम में सफलता समाई हुई है, इस निश्चय और नशे से आगे बढ़ो कि ब्राह्मणों के कदम जहां पड़ेंगे वहां पर पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी। तो इतना पॉजिटिव विचारधारा करना तो ये सफलता का आधार बन, ये सिद्धि है। तो यथार्थ विधि पूर्वक योग करो, जब योग में बैठते हो तो सिर्फ ये विधि नहीं अपनाओ, मैं तो आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, कई एक किसी विधि को लेकर के योग करना शुरू कर देते और 5 मिनट 10 मिनट की बात बोर हो जाते, अब क्या सोचूं मैं, कहते फिर योग नहीं लगता है, बुद्धि भटकती। इतनी विधियां बाबा ने बताई, अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे करो, ऐसे नहीं तो ऐसे करो। मान लो आज बीज रूप की स्टेज बनाने में आपको मेहनत लगती है, पावरफुल स्टेज है, बहुत मुश्किल से एकाग्र होकर के एकदम उस शक्तिशाली स्थिति में हम बैठे योग की, लेकिन आदत नहीं है, उसका अभ्यास नहीं किया हुआ है, 2 मिनट 5 मिनट मेहनत किया नहीं लगा, बोर हो गए, उठ गए, भाई योग में मजा नहीं आता मुझे। अरे बाबा यही थोड़ी कहता तुम बिंदु रूप बन करके सिर बैठो, वो तो कहता बच्चे पहले बाबा से बातें करो, मीठी मीठी रू रिहान करो, कोई से अगर प्यार होता है, स्नेह होता है, उससे बात करने लगे घंटों बीत जाता है, 5-10 मिनट क्या है। आप अगर किसी स्नेही के साथ बैठ जाओ, अपने दोस्त के साथ, मित्र के साथ बातें करने लगो, समय का पता ही नहीं चलता है कैसे बीत गया। अब बाबा अगर हमारा खुदा दोस्त है, उसको हमने दोस्त बनाया है, उससे हम बातें तो कर सकते हैं ना, बाबा आपको हमने कितना ढूंढा, कितना। हमारे पास एक भाई आता था बहुत बुजुर्ग तिनसुखिया से, तो वो बाबा के आगे आ गया एक बार, अव्यक्त बाबा के सामने, और बाबा के सामने बैठ करके बाबा को बोलता बाबा आपको मैं अभी नहीं छोड़ूंगा, बाबा आपको मैंने बहुत ढूंढा, बहुत भटका, और ऐसे सिर किया नीचे, उसके बाल नहीं थे, सब उड़ गए थे। कहता देखो आपको ढूंढते ढूंढते मेरा टिप्पण घिस गया सारा, एक भी बाल नहीं बचा है। अब भी मिले हो आप, अब मैं आपसे गिन गिन करके हिसाब लूंगा। और इतना हंसे, इतना बाबा से प्यार से, बाबा बहुत प्यार से मुस्कराया उसके सामने, देखता रहा बाबा, हाँ बच्चे ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत। इतनी मेहनत के बाद, इतना धक्के खाए, इतना भक्ति किया, इतनी पूजा पाठ किया, इतने तीर्थ किए, इतना दान पुण्य किया, इतने गंवाया सब कुछ, और फिर भक्ति का फल देने वाला सामने भगवान आ गया, वो मिल गया। अब उससे कहते योग कैसे करें, अब योग करने की मेहनत करनी है क्या, उसे दिल की बातें करो। अरे बाबा आप इतने समय के बाद मिले हो, ऐसे मिले हो, हमको ने आपको कितना ढूंढा, कितने मंदिरों में धक्के खाए, अब आप डायरेक्ट आ गए हो, अब हम आपसे पूरा अधिकार अपना लेके छोड़ेंगे। तो रू रियान करने लगो ना तो आधा घंटा एक घंटा आपका ऐसे निकल जाएगा। कभी रू रियान करो, कभी एकदम फरिश्ता बन करके बाबा के साथ उड़ जाओ, चलो बाबा मैं भी आपकी ड्रेस पहन लेता हूँ, जैसी आपकी चमकीली ड्रेस है, मैं लाइट की ड्रेस में आपके साथ मैं विश्व सेवा पर चलता हूँ। ऐसे मन से बातें करते करते उड़ने लगो फरिश्ता बन करके, शरीर यहाँ है और बुद्धि से हम बाबा के साथ उड़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कभी अपने निराकारी वतन में चले जाओ, लेकिन बुद्धि की ड्रिल चाहिए, बुद्धि को शांत करके नहीं बैठना, नहीं तो योग में बैठते ऐसे नींद आने लगेगी, नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। बहुत हल्के होकर के, खुशी से, नशे से ऐसे बैठो जो एकदम बाबा के प्यार में समा जाओ, खो जाओ। यथार्थ विधि ये है, लेकिन विधि पूर्वक नहीं बैठते तो योग ही नहीं लगता है, फिर उदासी, फिर सुस्ती, कोई आंखें ऊपर करता है, कोई नीचे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई वैसे करता है, और बाबा फिर उसको बड़े मजाक से, बड़े रमणीकता से कहते हैं कि जैसे हठ योगियों का म्यूजियम बना हुआ है जयपुर में, ऐसे मेरे बच्चे भी योग में हठ योग करते हैं, उल्टा लटक जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा योग नहीं चाहिए, योग में रमणीकता है, योग में बहुत खुशी है, अंदर से आत्मा डांस करती है, प्यार से बातें करती है। तो आप सब उदासी का योग में अनुभव नहीं करो, थकावट का अनुभव, योग थकावट को मिटाने वाला, और योग करने वाला ऐसे ऐसे करे थका हुआ दिखाई दे तो क्या फायदा है। तो बाबा से मसाज कराया करो, बाबा के पास चले जाओ, बाबा को बोलो बाबा मैं बहुत थका हुआ, मेरी मसाज कर दो आप। प्यार से ऐसे बातें करो, दिल से बातें करो, तो बाबा आपको रिस्पॉन्ड करेगा। वही सिद्धि है कि बाबा के साथ का, उनके मिलन का, उनकी अनुभूतियां हमें होने लगे, और उस रमणीकता से बाबा से सब शक्ति, सब वरदान हम प्राप्त कर लें। जहां अधिकार होता है, हुज्जत होती है, वहां माँ बाप भी सब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाप कुछ कहे, बच्चा कुछ करे, अपनी मनमत से चलेगा तो बाबा कुछ नहीं देगा। इसलिए बाबा के पास सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सबका भंडार है, मालिक है वो तो, और हम बच्चे उसके वारिस हैं। बाबा से कुछ भी मांगना नहीं, बाबा को मांगना शब्द भी अच्छा नहीं लगता, मांगता थोड़ी हो तुम, भक्ति के अंदर तो हर समय मांगते ही रहे हो, और ज्ञान मिलने के बाद भी अगर भगवान से मांग रहे हो, माना आपने भगवान को पहचाना नहीं है। बच्चे बन जाओ, बच्चे मांगते थोड़ी, वो तो वारिस हैं, उनके लिए तो सब कुछ है, ताला चाबी तो ही नहीं। आपको बच्चा अगर आता है घर में तो वारिस आता है, उसके लिए कोई ताले में चीजें रखी जाती है, लेकिन अगर कपूत है, सब उड़ाने वाला है, तो जरूर माँ बाप कुछ तो छिपा के रखेंगे। हम अगर बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, सपूत बच्चे हैं, श्रीमत पर चलने वाले हैं, मर्यादाओं का यथार्थ रीति से पालन कर रहे हैं, तो बाबा कहे तू ही तो मेरा वारिस है। तो हम बाबा के वारिस बन करके रहें, आज्ञाकारी बन करके रहें, श्रीमत में जी हजूर करें, बाबा हमारे लिए सदा हाजिर है, सब कुछ उसका, हमारे ऊपर, हमारे पर उसका अधिकार है और हमारा उसके ऊपर अधिकार है। अधिकारी बन जाओ, योग माना, मांगना नहीं योग में बैठ करके, बाबा थोड़ी तो शक्ति दे दो, थोड़ी मदद कर दो, थोड़ा ये विघ्न हटा दो। कई लोग तो ऐसे योग करते हैं, स्वार्थ आया तो बाबा बाबा करेंगे, और स्वार्थ पूरा हो गया तो बाबा दूर हो गया। स्वार्थ वाली याद बाबा को अच्छी नहीं, मांगने वाली याद नहीं। अधिकार से फरियाद कहता बाबा, याद में फरियाद क्यों कर रहे हो? बाबा को प्यार से याद करो, फरियाद नहीं, मांगना नहीं, कुछ भी सब कुछ बाबा दे रहा है, भरपूर किया है, संपन्न किया है, कोई कमी बाबा के बच्चों के पास नहीं है। अंदर की ये खुशी रहनी चाहिए कि मुझ ब्राह्मण आत्मा के पास संगम ऊपर कोई भी अप्राप्ति नहीं है, जितना बाबा ने दिया वह अथाह दिया है। लेकिन अगर भेंट करो ना किसी से तो पता नहीं चलेगा, तो कहोगे ये कमी है मेरे पास, इसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है। इसलिए बाबा कहता है किसी भी आत्मा से भेंट नहीं करना, मेरे पास जो कुछ है बाबा आपने बहुत कुछ दिया है, मैं इसको जितना सफल करूंगा, श्रेष्ठ काम में लगाऊंगा, उतना वृद्धि प्राप्त होगी। अगर किसी के पास ज्यादा है तो जरूर उसने सेवा में लगाया है, तब उसको रिटर्न मिल गया, कभी तो लगाया होगा, अभी नहीं तो भक्ति में लगाया होगा। कहते ये तो ऐसे ठगी करके ले आया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, अरे भाई प्रारब्ध अगर उसको मिली है तो कभी तो कुछ अच्छा किया होगा, किसी जन्म में किया होगा। तो हम सब बाबा के बच्चे किसी से भेंट न करें, हमको जितना बाबा ने दिया है उसको सेवा में लगाएं, उसको सही रूप में सफल करें, तो हमारे पास भी कई गुना होकर के उसका रिटर्न मिल जाएगा। जो रिटर्न मिलेगा वो सिद्धि है, और जो आपने किया वो विधि है। इसलिए हर वरदान के अंदर विधि और सिद्धि को नोट करना। मेरा एक ही लक्ष्य रहा है जब से वरदान शुरू किए है मुरली के अंदर, सफलता मूर्त भो अगर कहा है, हिम्मतवान भो कहा है बाबा ने, तो उसके लिए कुछ न कुछ विधि बताई है। और वो विधि पहली लाइन में ही है, जो पहली लाइन भाव वाली है उसमें विधि है और सिद्धि है। अगर विधि यथार्थ समझी हुई है, विधि पूर्वक हम चल रहे हैं, तो वो सिद्धि जो भाव के रूप में है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर विधि पर कदम नहीं है तो सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए याद की यथार्थ विधि, अशरीरी बनो, अपने आप को आत्मा निश्चय करके योग करो, जब बैठते हो शरीर के भान से अलग होकर के बैठो, सब संकल्पों को एकाग्र करके बैठो, एक बाबा के प्यार में समाये हुए बैठो, सबकी दुआएं उस आत्मा को खुशी में प्रफुल्लित रखें, तो वो खुशी में दुआओं में आत्मा जब बैठती है तो उसका योग सहज लग जाता है। इसलिए हल्का होकर के, खुशी में रह करके, दुआओं से संपन्न बन करके, सबको सुख दे करके फिर बाबा को याद करो, तो देखो आपका योग कितना सहज हो जाता है। कभी भी योग में मेहनत नहीं लगेगी, और अगर लग रही है तो चेक करना, अगर कहीं भी योग में मेहनत लग रही है तो चेक करना, कहीं न कहीं विधि गलत है, विधि गलत है, नहीं तो सहज योग, सुतह योग, कर्म योग, कितने श्रेष्ठ नाम योग को मिले हैं, लेकिन विधि कहीं ना कहीं हमने गलत की है, उसमें अपनी मनमत ऐड की है, परमत ऐड की है। क्या परमत और मनमत करते हैं? बाबा तो ऊपर रहता है, वो कहाँ सुनता है, वो तो निराकार है, वो तो ज्योति बिंदु है, साकार में तो कोई साथ होना चाहिए, किससे बातें करें, वो तो मूर्ति रूप में भी नहीं जिसके आगे मैं जाके बैठ जाऊं। तो मनमत ऐड करके फिर बाबा को दूर अनुभव करके बैठते हैं, या कहेंगे तो बहुत ऊंचे से ऊंचा और मैं तो नीच पापी हूं भक्ति की तरह। जहां समानता है वहां योग है, वहां मिलन है, वहां प्राप्तियां हैं, और जहां ऊंच नीच का भेद है वहां बहुत दूरी है, कोई प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति में प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि भगवान को हमने बहुत ऊंचा मान लिया और अपने को एकदम नीचा गिरा हुआ मान लिया, इसलिए कोई प्राप्ति नहीं हो। और अगर हुई भी किसी को तो भावना का भाड़ा जैसे मिलता है, जैसे कोई काम करो तो उसका भाड़ा माना किराया मिल जाए। तो भक्ति के अंदर भावना अनुसार भाड़ा मिला, किराया मिला, लेकिन अधिकार नहीं मिला। संगम ऊपर बाबा से हमें अधिकार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमारी भावना सिर्फ नहीं है लेकिन यथार्थ विधि है। हम अधिकार के रूप में बच्चे बन करके, सपूत बन करके, उनके श्रीमत पर चल करके सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सब अखुट खजाने से भरपूर, कोई कमी नहीं, माला माल है, भरपूर है, ऐसी स्थिति बना करके जाना। कोई कमी पेशी अनुभव हो ना तो बाबा के आगे बैठ करके बहुत समान स्थिति में बैठो। बाबा आप अगर शांति के सागर हैं, आप अगर प्रेम के सागर हैं, आप अगर आनंद के सागर हैं, तो मैं आपका बच्चा मास्टर हूं। उसी स्वरूप में बैठ के बातें करो, समानता के आधार से आपको अनुभव होंगे और आप उनके समान बन करके दाता बन जाओगे, देने वाले बन जाओ, बाबा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो यथार्थ योग की विधि क्या है? समान बन करके बाबा को याद करो, नीच बन करके, ऊंच समझ करके नहीं, नहीं तो दूरी बड़ी रहेगी। जोड़ी तब बनती है जब समान होती है। अगर जोड़ी में कोई एक नीचा, एक ऊपर, एक मोटा, एक पतला होगा तो जोड़ी नहीं मानेंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है समान जोड़ी बन करके, समान स्वरूप में बैठ करके, जैसे मैं निराकार हूं ऐसे तुम निराकार बनो। मैं फरिश्ता ड्रेस पहनता हूं तो तुम भी चमकीली ड्रेस पहन लो। तुमने अगर मिट्टी की ड्रेस पहनी हुई है और मैं चमकीली ड्रेस में हूं तो कभी मिलन नहीं होगा। समझ रहे हो बात मेरी को? बाबा चमकीली ड्रेस में, हमारा फरिश्ते ड्रेस में आया, ब्रह्मा की चमकीली ड्रेस में, संपूर्ण स्वरूप में है, और हम बच्चे इस देह की मिट्टी को उतार नहीं रहे हैं, बाबा से मिलन नहीं हो सकता। पहले देह की मिट्टी को भूल करके मैं भी एक लाइट की फरिश्ता ड्रेस में हूं, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, यथार्थ विधि, और उसे यथार्थ सिद्धि मिल जाएगी। बाबा से मिलन होगा, बाबा के साथ आप सेवा कर सकेंगे, उनकी शक्तियों का अनुभव कर सकेंगे। तो ये सब मुरली में बाबा ने सिखाई है विधियां, लेकिन हम कभी कभी उन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए समय पर वो याद नहीं आती। तो समय पर बाबा की सब विधियां याद आ जाएं, वास्तव में यही तीव्र पुरुषार्थ है। विधि याद नहीं आती, जब समय बीत जाता तो विधि याद आती, ऐसे करते तो होता, ये करते तो होता। आज जितना भी गलत काम हो जाता है, कर्मेंद्रियों से अधीन होकर के कोई कर्म होता है, उसका कारण क्या है? कौन सी विधि का उल्लंघन होता? बाबा ने विधि बताई है, बच्चे कोई भी काम हो, बोलने का, सुनने का, करने का, तो एक सेकेंड रुक करके पहले सोचो फिर करो, ये विधि है। कर लिया फिर सोच रहे हो गया फिर सोच रहे हो, नहीं करना चाहिए, यथार्थ विधि नहीं, सिद्धि कैसे मिलेगी? तो यथार्थ विधि है बोलने के पहले, करने के पहले, सोचने के पहले एक मिनट सोच लो कि मेरे साथ क्या जाएगा, ये मैं क्यों सोच रहा हूं, इसकी रिजल्ट क्या है। ये सोचना कहीं वातावरण को खराब तो नहीं कर देगा? जो सोच लेंगे वो बीज है, और सोच लिया तो कहीं ना कहीं बोल निकल जाएगा, दृष्टिकोण बन जाएगा, कर्म हो जाएंगे। इसलिए सोचने के भी पहले सोचना, बोलने के पहले सोचना, करने के पहले सोचना। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञानी तो आत्मा के लिए जो गुण है वो धैर्यता का गुण है, बहुत धैर्यता से। बातें आएंगी, सबके सामने आती हैं, लेकिन जो धैर्यवत होते हैं, बातें आई एक सेकंड शांत होके सोचा, बोलना है तो बोला, नहीं तो चुप, उसमें कभी टकराव नहीं पैदा होगा, उसमें कभी नुकसान नहीं होगा, उसमें कभी भी आपस में तू-तू मैं-मैं नहीं होगी। लेकिन बोल दिया, निकल गया, हो गया टकराव, और उसके बाद पश्चाताप सदा के लिए। इसलिए ध्यान देना, ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं, बाबा के बच्चे, बाबा की सभी श्रीमत रूपी विधियों को यथार्थ समझकर उनको अपनाओ और फिर विधि से सिद्धि प्राप्त। एक एक बाबा का बच्चा संगम युग पर सिद्धि स्वरूप है, और बाबा यही बनाना चाहता है। जो सोचे वो होने लगे, जो बोले हो जाए, और जिस कर्म में हाथ लगा दे वो कर्म में सफलता मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे विधि पूर्वक कर्म करना। ओके, ओम शांति। चलो 5 मिनट के लिए शरीरी स्थिति का अभ्यास करो।